उन्होंने कहा कि उस मूर्ति का दर्शन करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, और उन्होंने ठीक से ये नहीं पूछा कि कहां पर किस जगह में वो मूर्ति है, और वो लोग चले गए। इन्होंने अपने मंत्रियों को, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, सबको बुलाया। तो लोग पता लगाओ, उनसे हमने ये पूछा नहीं कि दिन बातों की मूर्ति कहाँ है, जहाँ पर कोई जाकर के मरने से ही वो शंख चक्र बना लेकर के बैकुंठ में जाता है। इसलिए तुम लोग पता लगाओ। उन्होंने चार अच्छे गुणी व्यक्तियों को, बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों को व्यवहार दिया और चारों दिशाओं में भेज दिया, एक एक महीने के अंदर में पता लगा करके आ जाना। उसमें से इनके पुरोहित का एक लड़का, कोई लोग कहते हैं जो पुरोहित थी और कोई कहते हैं कि युवक पुरोहित का लड़का, जिसका नाम विद्यापति था, उसको भी उन्होंने देखा। कोई उत्तर, कोई पश्चिम, कोई पूरा गया, और इसको दक्षिण दिशा में भेज, दक्षिण और पूर्व की दिशा। सब लोग चले गए और महीनों तक वो लोग लौटे नहीं। इसके बाद लौटे तो कोई पता लगा करके नहीं आए, और ये एक महीना से अधिक हो गया और घूमता रहा। राजा को उसकी बड़ी चिंता लगी, ये सब लोग तो लौट आए किंतु ये लौटा नहीं, और वो एकदम समुद्र के किनारे पूरब और दक्षिण के तरफ में बढ़ता 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 आजकल जहां जगन्नाथपुरी है उसी क्षेत्र में गया। उस क्षेत्र का नाम शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? कि वो शंख के आकार का, आकृति का वो है, बीच में ऊपर, फिर इधर में ऐसा, फिर इधर में ऐसा, जैसा शंख होता है ऐसे उसकी स्थिति है। भुवनेश्वर से लेकर के ये स्थान पूरी तक फैला हुआ है। उधर और भी साल्ट लेक, चिल्का हर, उधर तक ये चारों तरफ में फैला है। तो वो खुलता 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 समुद्र के किनारे में पहुंचा। वहां पर एक पहाड़ी के निकट पहुंचा। शाम हो गई थी उस समय में। उसने सोचा कि पता तो लगा नहीं, आज इसी गांव में कहीं पर ठहर जाऊं और फिर कल पता लगा करके चलूंगा। ओ भक्त, तो तुम घुमाओ ना, सामने घुमाई ले। इसीलिए वो लोगों से पूछा कि हम कहां पर ठहरे। पहले गांव में जो गांव का सरदार होता था, गांव के जो विशेष व्यक्ति होते थे, उसके यहाँ पर मुखिया के घर पर लोग ठहर जाया करते थे। उन लोगों ने बताया कि हम मुखिया का घर पास ही में है, आप मुखिया के घर में चले जाएंगे। ये वहां पर पहुंचे शाम को, किंतु घर का मालिक नहीं था, उसकी एक लड़की थी, वही लड़की घर में थी। उन्होंने कहा जैसे वो मुखिया जी कहाँ है, तो वो बाहर गए हैं, तो आप लौटेंगे, आप थोड़ी देर में लौटने ही वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझको ठहरना है। उन्होंने कहा पिताजी सबको ठहराते हैं, आप ही ठहरिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी। और तब तक थोड़ी देर के बाद में उसके पिताजी आ गए, बड़े खुशी के साथ में रखा। जब वो आए तो उनके अंगों से सुगंध निकल रहा था, बहुत ही सुगंध निकल रही। इनको कुछ संदेह हुआ, संदेह हो गया तो रात में तो आ रहे, कि दिन रात उनकी यही चिंता कि कैसे वो नील माधव ठाकुर जी का पता लगाया जाए। जब कुछ अंगों में गंध देखा और कुछ उनको ऐसे भान हुआ कि यहाँ पर हो सकता है कि पता लगे, तो उन्होंने जानबूझ करके उस लड़की को से प्रेम करना आरम्भ कर दिया। बड़े प्रेम के साथ में बोलना चलना, देखने में बड़े खूबसूरत तो ये थे ही, वो लड़की भी बड़ी खूबसूरत थी, वो अभी छोटी उम्र की थी, ये युवावस्था थे, बड़े प्रेम के साथ में बोलने लगे। धीरे 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 वहां से गए नहीं, वहीं पर रह गए, और कुछ दिनों में उनका प्रेम गाढ़ा हो गया। अब वो जब वो पिताजी चले जाते सवेरे और शाम को लौटते, उसने लड़की से पूछा जैसे तुम ये बतला सकते हो कहाँ गए। इसके पहले उन्होंने ऐसा उससे परिणय कर लिया, प्रेम कर लिया, धीरे 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 उसने कहा कि हम इस लड़के के साथ में शादी करें। और इन्होंने भी अपनी बात गुप्त रखी कि मेरी शादी हुई है। बस उसके पिताजी ने जो लड़का देख करके देखा जैसे ये ब्राह्मण का लड़का ही मालूम पड़ता है, और यदि शादी करना चाहता है कोई बात नहीं, घर जमाई रख लेंगे, बल घर जमाई करके और उस बच्चे के साथ में अपनी लड़की की शादी कर लें। अब वो लड़के ने कुछ देने के बाद में फिर उनसे प्रस्ताव रखा कि देखो अपने पिता से पूछो जे कहाँ जाते हैं रोज और उनके शरीर में गंध कैसे आती है इतनी सुगंध। तो उन्होंने कहा जिस समय पूजा करने जाता हूँ वो उसने लड़की ने बतलाया, किंतु ये नहीं बतलाते हैं कि कहाँ पर किस जगह में वो मूर्ति है। उसने लड़की को समझा दिया देखो तुम मेरी पत्नी अब हो, अब तुमको हमारे काम में सहायता करनी चाहिए, मैं इसी काम के लिए आया हूँ और यदि काम नहीं किया तो हमारे प्राण चले जाएं, इसलिए तुम हमको किसी प्रकार से ये बतलाओ गुप्त सूचना जी तुम्हारे पिताजी कहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। पिताजी से उसने जिद की, उन्होंने कहा ये मैं किसी को बतला नहीं सकता, तब हाँ यदि हमारा जमाता यदि उसको देखना चाहता है उसे हम दिखला देंगे और आंख पर पट्टी बांध करके ले जाएंगे, दिखला करके फिर उसको यहाँ पर लौटा करके तब फिर पट्टी खोलेंगे दर्शन कराएंगे। उसने कहा जी ठीक है ऐसा ही हो। सगर की बड़ी चतुर थी और बरसात का दिन था, उन्होंने सरसों लेकर उसकी चादर में बांध दी और कहा इसको गिराते जाना और कुछ दिनों के बाद में वर्षा होगी, घर में वर्षा खूब होती है, अभी वर्षा खूब जोर से एक महीना पहले से ही आरंभ हो गया स्नान यात्रा के दिन से ही, बस लेते जाना गिरा देना और थोड़े दिन में ही इससे बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, पौधा हो जाएगा और फिर इसमें फूल आ जाएगा, फिर उस फूलों को देखते हुए तुम अकेले से चला जाना उनको देख लेंगे। ठीक है, उनको गाड़ी पर बैठा दिया और इनको भी आंख में पट्टी बांध दी और वो अपने साथ में जंगलों को पार करता हुआ पहाड़ी के पास में पहुंचा और गाड़ी को खोल दिया बैलों को और उनको लेकर के ऊपर ले जा, किधर से आया है किस ये सब पता नहीं, ऊपर जाकर के उन्होंने मंदिर के सामने में उसका ये पट्टी खोल दी। खोलने के बाद में ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो भाव विदोर, ठाकुर जी का नाम ही निर्माधव था, बहुत प्रसन्न हुआ कि आज हमारे जीवन की साध पूरी हुई, अब महाराजा को मैं जाकर के बतलाऊंगा। ऐसा सोच करके ये वहीं पर दर्शन कर रहे थे और उधर में वो चला गया पुष्प चयन करने के लिए और पुष्प चयन करके फिर वो चंदन इत्यादि घिसेगा वस्तु इसमें लगाएगा और इसके बाद में पूजा पाठ करेगा। तो वो चला गया, इतने में ये घूम करके देखने लगे किधर से रास्ता है किधर क्या है, ये सब अच्छी तरह से देखने लगे और सीनरी देखने लगे जो भविष्य में आऊंगा तो फिर इस सब चीजों को देख करके पता लगा लूंगा। तो देख रहे थे उतने में उन्होंने देखा कि आज एक सुंदर तालाब है उस मंदिर के पास और मंदिर के पास ही में एक पेड़ है और पेड़ की डाले उस सरोवर तक चली गई है, पानी के बहुत भीतर तक चली गई, भीतर मैंने ऊपर से चली गई और उसी पर एक कौआ ऊंघ रहा था और ऊंघते ऊंघते हटात वो डाल से चुट होकर के नीचे गिर गया और पानी में वो डूब गया। पानी में डूबने के साथ ही साथ में वो मर गया, मरने से आत्मा निकली और वो देखा जैसे वो कौआ अब नहीं, कौआ का शरीर पड़ा हुआ है पानी के ऊपर में और वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ के पीठ पर बैठ करके चला जा रहा है। अजी ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, तो ये तो राजा को ऐसा ही बतलाया गया था, तो ठीक है मैंने भी प्रमाण देखा, अब मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही वैकुंठ लोक में जाऊं, अब राजा के पास किस लिए जाऊं। बस पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ करके उधर में जा ही रहा था इतने में वो आ गया, उसका ससुर ससुर आया, ससुर आ गया और अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बड़ी मुश्किल से उनसे पेड़ से उतारा, उतार करके भीतर ले गया, लेकर के अब फिर उनका पूजा इत्यादि किया, किंतु वो जान गया कि पेड़ पर किस लिए चढ़ा, ये जान गया जैसे नील माधव को जान गया है। और उनको कुछ ऐसे संदेह पैदा हुए जिससे कि वो समझ गया कि ये कहीं दूसरे आदमी जगह का व्यक्ति है, वो जाकर के उसको खबर दे देगा और फिर नील माधव पर उन्हीं का कब्जा हो जाएगा। जान करके वो डर गया और सोचा कि इसको बांध करके उस पर रखूंगा और कहीं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए पुनः उसको बांध करके रख। इतने में आकाशवाणी हुई कि इसको तुम छोड़ो मत, इसको छोड़ दो, तुम एक बात करो, इसको जाने दो, इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा और इसका भी कल्याण होगा। ऐसा कह करके उनको छुड़वा दिए। फिर वो अपने उनकी पट्टी बांध करके घर में ले आया। घर बनाने के बाद में अपनी स्त्री से बातचीत कर करके उसको सांत्वना दे करके एक दिन चुपके से वहां से निकल गया, महाराज के पास में पहुंच गया। महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। अपनी चतुरंगणी सेना, अपनी पत्नी, उन्हीं का नाम था गुंडीचा देवी, उनको साथ लेकर के और सब सेनाओं को साथ लेकर के कोष लेकर के खा जाना इत्यादि और वहां से चल दिया। अब हम लोग सब वहीं पर चल करके नील माधव की सेवा करेंगे और हमारा सफल मंगल। जब यहाँ आया तो देखा उस गांव के पास में जब आया तो देखा कि न तो गांव है, न कोई पहाड़ी है, न कोई रास्ता है, सब बालू से पूरा कर दिया। जैसे वहां पर जगन्नाथपुर में चढ़क पर्वत जैसे ऊंचा, हमारे मठ के सामने भी इतना ऊंचा पहाड़ का टीला वहां पर लगा हुआ था। हमारे ब्रह्मचारी ने उसे फेंक आकर के बराबर करके उसको साथ दिया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में आसपास में बड़े बड़े टीले पहाड़ जैसे सब हो जाते हैं। ये जगन्नाथ जी का भी जो मंदिर है, इसके पहले हजारों बार ऐसा हुआ बालू में एकदम थक गया, कोई पता ही नहीं चला, फिर बालू को खोदने से हटाने से तब फिर वो मंदिर का जीवन भाग प्राप्त हुआ। ये पहला मंदिर नहीं है, ये न जाने कितने बार वहां पर बना है, कितना बार बिगड़ा है और फिर बना है। ये अभी अंतिम वाला कितना एक डेढ़ हजार वर्ष का ये होगा। राजा कोई भीमसेन भीम नाम उनका क्या था, वो उसके राजा थे, उनके समय में ये बना है, वो सब लिखा है। इसके बाद में देखा जैसे कहीं पता नहीं है, बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के सोचा जैसे पता तो लगा नहीं है, इतना सब कुछ लेकर के आए वो समुद्र के किनारे, समुद्र के तरफ में मुंह करके प्राय उपवेशन कर गए, खाना पीना छोड़ करके अब मरने के लिए सत्याग्रह कर। यदि नहीं ठाकुर जी मिले, कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा तो हम तो मर जाए। आकाशवाणी में तुम चिंता मत करो, तुम उठो और तुम ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक में जाकर के इनका दर्शन करो और जैसा कहे वैसा करो। इतने में देखा कि ब्रह्मा जी उनको मिल गए, ब्रह्मा जी के साथ में वो वैकुंठ लोक। वहां नील माधव जी का दर्शन करके बड़े संतुष्ट हुए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब आप चलिए। उन्होंने कहा मैं अब नील माधव रूप में नहीं जाऊंगा, ये तो हम यही यही रहूंगा, किंतु मैं अब चार रूपों में होकर के वहां पर प्रकट होऊंगा, तुम लौट जाओ जहां से आए। वहां पर एक बंकिम मुहाना समुद्र का भाग है, उसी जगह में जाकर के या चक्रवेड उसको भी कहते हैं, चक्रतीर्थ चक्रवेड, वहीं पर जाकर के तुम रहना और मैं वहां से एक पेड़ के रूप में आऊंगा, लाल होगा, उस पर चक्र का चिन्ह होगा, बड़ी सुगंध निकलेगी और बहुत कठोर उसका लकड़ी होगा, तुम उसको निकलवा करके और उसी से चार मूर्ति बनाना, हम अपने आप निकल जाएंगे और उसी की तुम वहां पर प्रतिष्ठा करना और प्रतिष्ठा करने के बाद में हमारी पूजा इत्यादि करना। वहां से लौटे लौटते आते देखते हैं क्या वो कितने राजा बदल गए हैं, बाई चांस उनकी स्त्री और बच्चे जो लोग थे और पुरोहित इत्यादि वो सब नहीं बदले और बाकी सब का सब फंस होकर के परिवर्तन हो गया है। अब आकर के समुद्र के किनारे में बैठ करके और कुछ आराधना कर रहे थे, इतने में वो पेड़ एक लाल बढ़ता हुआ उसकी उसका थर्ड बहुत मोटा वहां पर। राजा ने अपने समस्त सेवकों के साथ में उसको निकालना चाहा किंतु वो निकले नहीं पानी पर, पानी में से बहुत चेष्टा की, हाथी लगाए गए, सब कुछ लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आकाशवाणी या कुछ ऐसी हुई, ये ऐसे नहीं निकलेंगे, सुंदर रथ बनाओ और यहाँ ले आओ, और हमारी जो पहले जो वंश के लोग पूजा करते थे सब उन लोगों को ले आओ बुलाकर, क्या नाम विश्वावसु, उनको बुला लाओ, और वो जो पुरोहित का लड़का जो तुम्हारा जो आया था उसको भी बुलाओ, और ये लोग आकर के आए और तुम प्रार्थना करो रानी के समय, और इन लोगों को लगा दो, इनके स्पर्श मात्र से ही हम रथ पर चढ़ जाएंगे और फिर हमको वहां पर ले जाएंगे। ऐसा ही किया गया, विश्वावसु आए और इधर में ये विद्यापति भी आया, राजा और रानी दोनों हाथ जोड़ करके रथ के सामने से उनको खड़े होकर के उसकी पूजा और प्रार्थना की, और ये लोग जमीन स्पर्श किया प्रणाम करके तो अपने आप रथ में चढ़ गए। रथ में चढ़ने के बाद में इनको ले जाया गया वहां पर जहां पर की पंडाल बना था और खेमे लगाए गए थे, जहां पर की देश विदेश से मिस्त्री लोग वहां पर जुटे थे, कारीगर, कारीगर मैंने ब्राह्मणी कारीगर, मूर्ति को बनाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, इसलिए जयपुर के जितने भी कारीगर हैं पहले वाले ब्राह्मण थे, अब सब दूसरे दूसरे भी जुट गए, किंतु पेशा यह उनके पूर्वज लोग सब ब्राह्मण हैं, अभी भी जितने भी मूर्ति अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो सब ब्राह्मण हैं। तो वो लोग सब एकत्रित हुए थे, महाराज ने कहा जैसे आप लोग भगवान की सुंदर मूर्ति इसमें बनाए, वो लोग अपनी छेनी हथौड़ी और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर गए और इस जब उसमें मारते लोहे जैसा उड़ करके चला, लोहे से भी अधिक कठिन कुछ नहीं कर सके। अंत में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया बड़ा तेजस्वी बहुत ही सुंदर, उसके हाथ में उंगलियां आर्टिस्ट फिंगर वाला और कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के आया, उसने कहा कि आप आदेश दें तो मैं बना दू, भाई हम तो यही चाहते थे, तो ठीक है। उन्होंने कहा एक बात करो, बंद घर में मैं बनाऊंगा, यहाँ पर अब घर बना दो और उसमें कोई नहीं रहेगा, अकेले मैं रहूंगा और 21 दिन लगेंगे हमारे बनाने में और हमारा दरवाजा 21 दिन तक नहीं खुलेगा, हमारा शर्त स्वीकार हो तो मैं जाऊं, तो ठीक है जाइए बनाइए, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के और वो घर में चला गया, भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और 21 दिन में हम बनाएंगे ऐसी संकल्प। राजा रानी एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन सात दिन हो गए, किंतु देखा जब भीतर से कोई शब्द ही नहीं हो रहा, ठप ठुक कोई भी शब्द, और ये छह दिन तक पानी भी नहीं ले गया, खाना भी नहीं ले गया, तो ये तो मर गया होगा, जब निकल नहीं रहा तो ये ब्राह्मण हत्या का एक पाप लगेगा, इसलिए पहले दरवाजा को खुलवाने की चेष्टा की। राजा ने कहा कि साक्ष थोड़ा दिन और देखो, और दो एक दिन देखा किंतु कुछ भी नहीं, इसलिए रानी ने जबरदस्ती कहा कि इस दरवाजे को तोड़वा करके देखा जाए। राजा ने कहा जो तुम्हारी जब इच्छा हो है तो वैसा ही किया जाए, उन्होंने दरवाजे को तोड़वाया और तोड़वा करके भीतर गया, जमीन दिख गए तो वो जो ब्राह्मण थे कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, अभी तो कितने दिन कितना दिन हुआ,
14 दिन
हुआ था, तो 14 दिन हुए थे, अरे अभी तो इतना दिन बाकी है, मैंने तो अभी पूरा कुछ नहीं किया, ये तो थोड़े से अभी कुछ बनाए हैं, तो अब होगा नहीं, तुमने बीच में गड़बड़ कर दिया। अब प्रभु की इच्छा यही है कि इसके यही तक रहे। अब ऐसे ही इनकी विग्रह की प्रतिष्ठा कर दिया और कुछ नहीं। राजा रानी बड़े दुखी थे, किंतु जो जैसा सुना है वैसा ही हुआ। फिर वैसा का वैसा रह गया। वो ब्राह्मण और कोई नहीं था, स्वयं जगन्नाथ देव ही थे। तो उसमें से जगन्नाथ देव, बलदेव, सुभद्रा और चक, ये चार उसमें से अधूरे रूप में बने हुए ये सब चीज थे। इसके बाद तो ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। राजा ने सोचा जैसे इसी की प्रतिष्ठा कर दी थी, इसलिए आज वहां पर पहले मंदिर बनाया था, मंदिर के संबंध में भी कुछ विवाद खड़ा हुआ। वो मंदिर बना करके इस स्थान पर और गए थे निर्माधव लाने के लिए, किंतु वहां से आए तो कितना दिन हो गया, वो मंदिर बालू में दब गया था। और तब तक एक दूसरा राजा हुआ, उसने कहा बाली को हटा करके कहा कि मैंने मंदिर को बनाया। जब इंद्रद्युम्न लौटे तो दोनों में कुछ विवाद हुआ। इंद्रद्युम्न ने कहा कि ये मेरा मंदिर बनाया हुआ, तुमने इसको रिपेयर करा है। और वो कहता था कि नहीं, हमने इसको पूरा बनाया है। तो वहां पर एक कौआ था, कौआ कौन कहा को सुन दी, अभी भी वो वृक्ष है
अक्षरगढ़,
और वहीं पर वो रामचंद्र जी का की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो उनसे पूछा गया ये मंदिर किसका है, किसका किसने बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर इंद्रद्युम्न ने बनवाया और पीछे से इस राजा ने उसको बालू हटवा करके रिपेयर मात्र कराया। वो बहुत लज्जित हुआ और लज्जित होकर के मारकंडे सरोवर एक है वहीं पर उस तरफ एकदम शहर के दक्षिण उत्तर की तरफ बहुत दूर है वहां से। तो वहां पर वो उधर में चले गए और वहीं पर रहने लगे लज्जा के मारे। और इधर में उस मंदिर में ले आएंगे उस मूर्ति को, मूर्ति में को ले आएंगे, इसलिए मंदिर को साफ किया जा रहा है। तो अभी जहां मंदिर है ना, यहां पर मंदिर था और ये सब जो हुआ था वो कहां हुआ था, जहां पर कि वो ठाकुर जी बने हुए थे गुंडीजा के पास।
अच्छा, नीलमाधव मंदिर जो अभी है वो ठीक है, नदी की तरह
बहुत 45-46 बिंदु दूर, हाँ वही हुआ 45-46 में और 50 में क्या अंतर, 400। तो फिर उस समय में वो मूर्ति को लाया गया और वहां पर विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। उस समय ठाकुर जी से इन्होंने वर मांगा। ठाकुर जी ने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा कि वर मैं ये मांगता हूं कि हमारा वंश न चले। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, अरे तुमने इतना बड़ा विशाल मंदिर बनवाया और वहां पर हमको प्रकाशित किया और तुम निर्वंश होने के लिए कहा कि हमारा वंश न चले, इसका मतलब क्या। पर इसलिए कि पुत्र भी कभी कुपुत्र हो जाता है, हमारा वंश यदि चलेगा तो कोई कहेगा कि ये ठाकुर जी मेरे हैं और प्रणामी जितनी आएगी और जितना इसमें कुछ होगा चढ़ावट चढ़ावट सब वो भोकरेगा, नरक में जाएंगे ये सब। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई आशा भी हमारे कुल में पैदा नहीं हो कि ठाकुर जी को अपना मान करके और अपने भोग के लिए उनको बनाए और उनकी पूजा पाठ करें और उनका एक भी कोई चीज हम लोग खाएं, नहीं तो नरक में जाएंगे। बल्कि ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, इसलिए हमारा वंश न चले और कोई भी न कहे ये मेरे ठाकुर जी, और इसकी व्यवस्था चलती रहे। इसके लिए राज्य पाठ का जितना जो कुछ था सब उसके लिए दे। ठाकुर जी ने कहा जैसे एवं मस्तु ऐसा ही होगा, किंतु एक बात होगी और उन्होंने कहा राजा ने जो किंतु वह ठाकुर जी ने ही शायद कहा जो हमारी पहले पूजा करता था क्या ना
विश्वावसु
और उसके वंश में जो लोग होंगे वो लोग वर्ष में 9 दिन एक महीना हाँ स्नान यात्रा से लेकर और रथ आने तक एक महीना इनकी पूजा रहेगी। ये लोग जैसा बनाएंगे वैसा ही ये सब खाएंगे पिएंगे और सेवा लोग, और इनका नाम होगा दैता माने भगवान के ये पिए। उस समय ये सुद्रटों हैं पुलिंदी हैं ये सब कोई नहीं कहेगा, इन्हीं का अधिकार होगा और इनका ऐसा अधिकार है ठाकुर जी को गाली भी देंगे जो कुछ भी करेंगे। ये सब साले इत्यादि जितना जगत में गाली है सब उनको देते हैं और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होकर के माने ये गोपियों का भाव है उनका। और इनके जो बेटे हैं होंगे और वंश वाले विद्यापति के ये ठाकुर जी की पूजा करेंगे वंश क्रम से। और सुपकार कौन होगा
विद्यापति के जो विश्वा से लड़की है उनसे पैदा होने वाले
विश्वावसु से जो दो पत्नियां हैं एक ब्राह्मण वाली
एक विश्वावसु की लड़की
विद्यापति की एक है विद्या विश्वावसु की लड़की और एक पहले वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी वाले लड़के जितने वो पूजा करेंगे और ये पुनिंदी वाले जो लड़के होंगे संतान ये लोग रसोई सुपकार होंगे उनकी रसोई बनाएंगे। रसोई बनाने वाला भी ब्राह्मण होता है और पुजारी भी होता है। अब उसकी दोनों पत्नियों के लड़के ब्राह्मण ही कहलाते हैं किंतु एक रसोई कार बनाने वाले वे और एक वे इस तरह से उनका सब विभाग इत्यादि कर करके और उनकी सेवा सदा के लिए नियुक्त की। ऐसा कोई भी प्राचीन मंदिर इनके समान नहीं है जिसकी इतनी शुभ व्यवस्था सब अभी तक चलती आ रही है हजारों वर्ष। कितने वर्ष कितने युग के युग चले गए शायद ब्रह्मा भी बदल गए इसी ब्रह्मा के काल का ये नहीं है न जाने कितने ब्रह्मा परार्थ ये ब्रह्मा का भी परार्थ से पहले का ये सब चीज है बहुत पुराना है। यहाँ पर बलदेव जी भी गए हैं राम लक्ष्मण भरत जी भी गए हैं इनका सबका दर्शन किया है। यहाँ पर कपिल देव जी भी गए हैं यहाँ पर जितने भी भगवत अवतार भी हैं वो तीर्थ छल के स्थल से वहां पर गए इसलिए बहुत प्राचीन है। इसके बाद में अब प्रति वर्ष इसी दिन में अब ठाकुर जी को मूल मंदिर से लेकर के वहां ले जाते हैं गुंडीचा वाले और 9 दिन के बाद में फिर वहां से लौट आकर के ले आते। एक दिन पहले वहां का मंदिर खोया जाता है गुंडीचा मंदिर वाला और इसके बाद में तब फिर दूसरे दिन जाते हैं। महाप्रभु के समय में इसकी भावना एकदम महाप्रभु जी ने बीच में ऐसा हुआ कि बौद्धों ने इसको दखल कर दिया और दखल करके इसको धर्म धर्म बैन धर्म मैंने चार नाम उनके दिए तीन कुछ दिया हमको याद नहीं उनका तीन मूर्ति बना दिया और लाल रंग से एकदम रंग दिया जगन्नाथ जी के एकदम पोत करके क्योंकि वो लोग मूर्ति फूर्ति कुछ नहीं मानते इसलिए धर्म और क्या क्या कुछ याद नहीं उन तीन चीजों के रूप में बदल दिया और बौद्ध की मूर्ति माने जाने लगी, धर्म को एकदम भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद में फिर शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने धीरे धीरे बौद्धों को भगाया वहां से और भारतवर्ष से भी भगाया, और भगाने के बाद से फिर वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। इसके बाद में आज 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर हो, वहां का सब कुछ एकदम भाव में दूसरे रूप में बदल दिया। क्रियाएं तो वही होती रही किंतु भाव सब कुछ अब प्रेम में भाव। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये भाव लगाया और वहां पर स्थापित किया, क्योंकि उसी भाव में वो विभावित रहते। कृष्ण चले गए हैं वृंदावन को छोड़कर के मथुरा से द्वारका, गोपियां विरह में या ब्रजवासी सब लोग विरह में तड़प रहे हैं, वो लोग कृष्ण को सब समय लौटाने की चेष्टा कर रहे हैं और एक एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कृष्ण कब मधुपुरी या द्वारका से लौटेंगे। कुछ दिनों के बाद में सूर्य ग्रहण लगा और गोपियां सब नंद बाबा और यशोदा जी के साथ वहां पर गई और वहां पर कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद में जैसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोपियों ने कृष्ण से प्रतिश्रुति दी कि हम तुम्हारे साथ में ब्रज में चलें। इसलिए गोपियों ने अपने मनोरथ पर चढ़ा करके और वहां से ले आए, लेकर के फिर पुनः जैसा पहले जैसे ब्रज का भाव था वैसा ही होने लगा। कुछ दिन के बाद में कृष्णचंद्र जी समस्त ब्रजवासियों को लेकर के वो लोग ब्रज में चले गए और उनकी जो दूसरी मूर्ति थी उस रूप से वो द्वारका मूर्ति थी। अब यहाँ पर जगन्नाथपुरी को महाप्रभु जी ने मान लिया, जहां मंदिर है उसको मान लिया द्वारका, और जहां पर गुंडीचा मंदिर है उसको मान लिया वृंदावन। अब वो प्रतिवर्ष महाप्रभु ये सोचते हैं कि कृष्ण को लाना है मथुरा से द्वारका से वृंदावन, इसलिए सब लोग भक्त लोग वहां से जगन्नाथ जी के रथ पर खींच करके यहां लाते हैं। जगन्नाथ जी बलदेव प्रभु और सुभद्रा के साथ में आते हैं, क्योंकि रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि जो लक्ष्मियां हैं कहीं वो लोग संदेह करती हैं, यदि कृष्ण अकेले जाएंगे तो जरूर वृंदावन में चले जाएंगे और लौटेंगे नहीं। इसलिए कृष्ण ने बहाना किया, मैं स्नान किया मैंने और तुम लोगों ने सब 16,000 रानियों ने हमको इतना स्नान कराया कि हमको जुखाम सर्दी लग गई और थोड़े दिन के बाद में मुझे मेरा पेट भी पतला हो गया, अब मैं घर से निकल नहीं सकता। तो उन्होंने अनवसर में इतना दिन तक 15 दिन घर से निकले नहीं, अस्वस्थ पड़े हुए हैं। और वो दैता लोगों को पता लगाया और दैता लोग आकर के उनको पाचन हजमी क्या क्या उनको बना करके खिला रहे। अब कृष्ण थोड़े से जब ठीक हुए तो अपने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बीमार रहा इधर और मेरा मन नहीं लगता है,
क्लाइमेट चेंज करना,
मैं थोड़ा सा अपनी बगीची की तरफ में जाकर के जरा घूमा। कहे अकेले हम भी साथ चले, नहीं तुम मत साथ चलो, तुम रहने दो, तुम्हारा घर में बहुत काम होगा, बाल बच्चे हैं, इसलिए मुझको अकेले जाने। उन्होंने कहा ये जरूर इनकी मन में कुछ गड़बड़ी है, ये वृंदावन जाएगा जरूर, इसलिए उन्होंने सोचा अच्छा तो एक बात करो, मैं नहीं जाऊंगी किंतु बलदेव भैया को और सुभद्रा जी के बहन को लेते जाऊं। तो वो राजी हो गए, बलदेव जी को साथ लेकर के और सुभद्रा जी को साथ लेकर के रथ पर चढ़ करके वहां जाकर के सुंदराचल में जब पहुंचे तो उन्होंने जसोदा मैया के पास में इनको बैठा दिया, सुभद्रा जी को और बलदेव जी को। और अपने चले गए वृंदावन के नौ कुंजों में गोपियों के साथ में मिलने के लिए चले गए। और उनको याद ही नहीं रही जो आज गया कि कल गया कि परसों गया, पांच दिन उनके बीत गए। अब इनको चिंता होगी कहां गए, ये खोजती खोजती खोजने के लिए निकली और हाथ में लठिया ले ली, अस्त्र शस्त्र ले लिए, सोने के रथ पर चढ़ करके डुगडुगी बजाती हुई मशाल लेकर के उत्सव के साथ में परिकरों के साथ में ये वहां पर। और देखा जाए रथ खड़ा है किंतु वो है नहीं। वृंदावन में पहुंच करके पहले रथ को तोड़ने का उद्योग किया, उसके ओने कोने और रथ को तोड़ने के लिए चक्के इत्यादि कुछ थोड़ा सा भाग तोड़ दिया। इसके बाद में देखे जो वृंदावन में कहां है, कुंजों में खोजने लगे, खोज करके जो सामने आया उसको बांधा, मारा पीटा। अंत में लोगों ने कहा अच्छा कल तुम्हारे हम स्वामी को ला देंगे, तब फिर वहां से लौट सकते। इसके बाद में फिर नौवे दिन एकादशी को वहां से ठाकुर जी फिर लौट
दशमी के दिन लौट
दशमी के वहां पर लौट। ये तो हुआ साधारण भाव। महाप्रभु जी ने इसको इस प्रकार से लिया, गोपियां कृष्ण को लाने के लिए गई हैं और उनको मनोरथ पर चढ़ा करके ले आ रही। से तो परानाथ पाई हूं जहां लागी मदन दहन मदन मने काम प्रेम, जिस प्रेम के वजह से हम गिरह में तड़प रही हैं आज बहुत दिनों से, उस प्रभु को हमने आज पाया और उनको लेकर के आ रही। तो एक दिन पहले ये गुंडी चा लीला जो आज हम लोग अभी करेंगे मंदिर इत्यादि साहब, वहां पर जगन्नाथ जी को लाना है इसलिए वहां पर सब नौकर चाकर जाते थे और एक मुखिया नौकरों में एक मुखिया होता था वो सबको ले जाता था, 10-20 घड़े ले जाता था, झाड़ू ले जाता था, उनको महीना पैसे कुछ दिया जाता था और वहां झाड़ू लेकर के साफ करके फिर चला था। महाप्रभु जी आज के दिन में काशी में इत्यादि से परामर्श किया ये महाराजा को कह करके ये सेवा हमको दी जाए, नौकर चाकर के द्वारा मंदिर खुलाया जाए और पूजा कराया देगी ये ठीक नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और स्वयं मंदिर में झाड़ू देना धोना साफ करना, साफ करके निर्मल करके फिर हम ठाकुर जी को खुद ले जाए। पहले हाथियों के द्वारा खेचवा करके ले जाते, महाप्रभु ने हम लोग सब खेच करके ले जाए। इसलिए महाप्रभु जी आज के दिन में गुंडीचा मंदिर में गए हैं साफ करने के लिए। महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों को बुलाया और उनके हाथों में एक एक झाड़ू इसके हाथों में दिया, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी, रामानंद, स्वरूप दामोदर, परमानंद पुरी और जितने थे ना सब लोगों के हाथों में बड़े बड़े जो उन लोगों के हाथों में दिया और एक एक घड़ा दिया, घड़ा दे करके और झाड़ू दे करके और तब अपने हाथ से चंदन और ये लेकर के सबके हाथ सिर पर दिया, चंदन लगाया और सबको माला पहनाई महाप्रभु अपने हाथ से। यह देख करके महाप्रभु के जितने भक्त थे आनंद में भर गए। आज तक ऐसी लीला कभी नहीं हुई थी जो महाप्रभु अपने भक्तों को चंदन और माला दे करके एक सेवा में निजुक्त, यहीं से महाप्रभु जी की लीला आरंभ हुई है। तो पहली लीला आरंभ क्या हुई, झाड़ू देना मंदिर में, मन मंदिर में झाड़ू देना है, वो मंदिर में तो झाड़ू देना सहज है। अभी हमने कहा है झाड़ू भी आ गया है, झाड़ू आ गया है, अब खट भी है, मंदिर हम धोएंगे पोछेंगे और साफ करेंगे, किंतु मन मंदिर में झाड़ू लगाना ये बड़ा भारी कठिन है, क्रोध को उसमें से हटाना है, क्रोध के पत्थर बड़े बड़े हैं उसमें, काम क्रोध लोभ मत्सर्य ये सब अपराध हैं, अनर्थ हैं, साधुओं की निंदा है, गुरु की अवज्ञा है, और जो दर्शन नाम अपराध हैं, और कितने प्रकार के ये सब अनर्थ हैं, प्रारंभ से अनर्थ से लेकर के उत्साह मई हनतरला गुरु विकल्पा विषय संग्रह इत्यादि ये सब हटाना है। लय प्रमाद उठाना है, हटाना है। लय मैंने क्या, अभी यहाँ पर प्रलय जैसा हो रहा है, लय प्रलय, कितने आदमी सो रहे हैं, ठंडी ठंडी बयार बह रही है और गर्मी तो है ही है, कितने आदमी आराम से देखते हैं यहाँ अभी भी सो रहे हैं, उठ नहीं पा रहे, देखिए कौन कौन सो रहे हैं। तो ये जो निद्रा देवी है भजन में प्रधान बाधक है, यदि वैष्णव की निंदा नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात, गुरु की अवज्ञा नहीं करते हैं और नम अपराध नहीं करते हैं ये बहुत अच्छी बात, लोगों से झगड़ा नहीं करते हैं, क्रोध इत्यादि दूर हो गया, किंतु ये दूर होने पर भी यदि प्रवचन में हरिकथा में यदि सो गए तो सब खो गए, करना धारना कुछ नहीं होगा। इसलिए जहां तक हो सके दुकान पर तो आदमी नहीं सो जाता, क्यों नहीं सोता, पैसा धड़ाझट मैं आ रही है ना, तो उसके बटोरने में माने क्या, यदि सांप आ रहा हो ना तो सांप को बटोरेंगे कि नहीं, सांप तो चौकन्ने हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। वैसे ये विषय आ रहा है उसमें हम लोग बड़े ध्यान से जपते हैं, किंतु जहां हरि कथा आई तहां बस आंख बंद करके सो जाते हैं। तो इसलिए इस सब को भी लय प्रमाद इत्यादि को भी छोड़ना है। इसके अतिरिक्त तो और भी एक चीज है, भजन करने पर प्रतिष्ठा आ जाएगी, यदि थोड़ा सा सुरीला गला हुआ और जरा थोड़ा सा भाषण देने आ गया तब तो पूछो मत, रुपया पैसा प्रतिष्ठा सब चरणों में झुकने लग जाएगा, कहीं मैंने क्या था क्या हो गया कि छुनी फिर झुनू, यह सभी हो जाएगा, उसमें भजन भी चौपट हो जाएगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। इसलिए और कभी कभी हो जाएगा, भजन कर रहे हैं और कोई मर गया ना, कोई बात जिसे आपने प्रार्थना की आशा नहीं होना चाहिए प्रभु, किंतु वही हो गया तो भी भजन छूट जाता है। ये दुष्कृति उत्थव और सुकृति उत्थव भजन उत्थव ये जितने प्रकार के ये सब अनर्थ है, इन सबको छोड़ करके सचेत हो करके भगवान का भजन करना ही, ये झाड़ू देना है हृदय से, ये जितनी चीजें यहां सब तो सुना, किंतु दो आदमी है ना दोनों में बनती नहीं, दो बहने हैं उनमें बनती नहीं, महीने हो गए वर्षों हो गए परस्पर बोली चाली बंद है, ब्रह्मचारी का एक ब्रह्मचारी के साथ में, एक बहन का दूसरी बहन के साथ में, गुरु बहने तो बहुत दूर की बात, तो तब फिर क्या हुआ, मंदिर साफ हुआ, झाड़ू लगा कि नहीं लगा, ये सब दूर करना है। यदि हम जैसे एक प्रकाश होता है ना प्रदीप, प्रदीप का नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है, क्यों अंधेरा होता है, जो जगत को प्रकाशित कर रहा है उसी के नीचे अंधेरा, ये दिखला रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक हम प्रेम का पाठ जगत को पढ़ाते हैं और सुन रहे हैं प्रेम का पाठ, प्रेम करना चाहिए, तो अपने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से, अपनी बहन से, दूसरों से, इन्हीं से यदि भी बात हुआ तो फिर क्या हुआ, ये प्रेम हमारे अंदर भी नहीं आएगा तो फिर दूसरों को हम क्या शिक्षा दें, कहेंगे त्रिनाद अपनी याद करो, त्रिनाद अपनी सुने चेन करो अपनी सही सुनना, याद हुआ, हम याद हो गया, बोलो तो त्रिनाद अपनी सुने चेन करो अपनी सही अमानी ना मान देना, कितनी सदा झगड़ा किस लिए होता है, ये चार चीजों के लिए ही झगड़ा, कोई किसी से कम नहीं बनना चाहता, मैं बुद्धिमान हूँ, इसी के लिए तो झगड़ा होता है, या कोई चीज आ गई अच्छी चीज, ये मैं इसका मालिक हूँ, वो कहता है मैं इनका, मैं तुमसे बढ़कर के बुद्धिमान हूँ, मैं तुमसे बढ़कर, कोई कम नहीं होना चाहता, ये प्रतिष्ठा है ये सब मेरी है, तुम्हारी कुछ नहीं, किसी को प्रतिष्ठा इतना नहीं देना चाहता कोई, अब सब प्रतिष्ठा अपने लिए, इन चार बातों के लिए ही लड़ाई, ये चार बातें ही खत्म हो जाए तो लड़ाई किस चीज का, मैं सबसे छोटा हूँ छोटी हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं सेनाओं में, ये देखो मैं सबसे छोटा हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा और तुम लोग कहाँ बैठेगा, ऊपर में तुम लोग बैठो, नीचे मत बैठो, वो पेड़ के ऊपर में बैठ रहे हैं और रामचंद्र जी कहाँ बैठ रहे हैं, पेड़ के। मुखिया ऐसा होना चाहिए, भजन करने वाला भी ऐसा ना चाहिए, दूसरों को सम्मान दे करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये झाड़ू देना है, ये झाड़ू देना हम आपके, अभी हम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब समझा रहे हैं, समझ रहे हैं पूरी बात, किंतु ये काम करना है, झाड़ू देना है ना, ये देना है, इसलिए कैसे दिया जाए किसको, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं झाड़ूदार हूं, हम लोग झाड़ूदार नहीं है, बल्कि और सब गंदी चीजों को हृदय में रख करके और गंदा बनाने वाले, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी आज के दिन में, कल जगन्नाथ जी को लाना है, इसने मंदिर को साफ सुथरा रखना है, मंदिर माने ये मंदिर, ठाकुर जी को लाना है, कैसे साफ होगा, जब तक ये रहेगी बातें, प्रतिष्ठा सपच रमणी, जब तक ये प्रतिष्ठा हृदय जब तक है तब तक ठाकुर, और ना वाले को भी कुटी ना, बहुत से हम लोग हैं एकत्रित रहते हैं, हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं, किंतु जो भजन कराने वाले गुरु हैं उनसे भी कपटता करके कुछ छिपा करके रखते हैं, उनसे मत छिपाओ। दुर्योधन की मैया गंधारी थी ना, कहे बेटा मैं ये नहीं कहूँ कि तुम्हारी जीत हो जाए, मैं अपने मुख से नहीं कहूँ, किंतु तुमको इस योग्य बना दूंगी कि तुम्हारी जीत हो जाए, तुम हारेगा नहीं। दुर्योधन कहा जी मैया तू हमको बर दे दे, तुम कह दे तुम्हारी जीत हो जाए, तुमने कहा जी नहीं ये मैं नहीं कहूंगा, किंतु तुम को जैसा कर रहा तुम ऐसा करो तुम्हारी जीत हो सकती, यदि करेगा तो जीत होगी, नहीं करेगा नहीं। अरे क्या करूं, तुम नंगे एकदम हमारे सामने आ जाओ, एकदम बिल्कुल नंगे। अरे ठीक है, ये कौन सा बड़ी वाली बात, तो वो जिस घर में थी कमरे में वो गया, कपड़ा पड़ा खोल करके एकदम नंगा आया, किंतु मैया के सामने अब तो बड़ा हो गया ना, इसलिए यहाँ पर ढक लिया, और तो सब ऐसा मैं अरे रे क्या कर दिया तुमने, तू हमारा बेटा हमारे गर्भ से निकला, तुम हमसे लज्जा कर रहा, ये यहाँ पर ढक लिया यहाँ, ये तो बड़ा खराब, अब यहीं से तू युद्ध में यहीं पर तुमको चोट लगेगी या यहीं से तुम्हारा प्रणाम, इसलिए भीम ने गदा कहा मारा, यही पर मारा जिसको वो छिपाया था, जो वज्र नहीं हो सका, और बाकी शरीर तो मैया से गुरु से और पिता से यदि कोई बात छिपाए, विशेष करके गुरु से छिपाएगा ना तो क्या होगा, वही दशा, इसलिए गुरु वैष्णव के साथ में जिसके हम यहाँ पर विश्वास करके आए हैं घर छोड़ करके सब, और उसी को विश्वास नहीं दिया, कहाँ गया था, तो यदि गया है पूरब तो कहेगा कि मैं पश्चिम गया था, कोई भी बात सीधे बात नहीं करे, आज क्या क्या भिक्षा हुई, आज क्या क्या बात तुम्हारे अंदर में आई, कुछ नहीं, तो गुरु जी झाड़ू देकर के निकालेंगे, कलका जाके ये चाहता है ये सब आवर्जना ही जितनी गंदगी है हमारे हृदय का रहे, इसे हमारा क्या ऋषि का बिगड़ेगा, शरणागत पूरा हुआ नहीं, इसलिए महाप्रभु चाहते हैं कि आज जितनी भी गंदगियां हैं हृदय में अच्छा निष्कपट होकर के उसको अच्छी तरह से झाड़ो, जो नहीं निकले उसको कपड़े से महाप्रभु क्या कर रहे हैं
से।
और रगड़ रगड़ करके क्यों ठाकुर जी बैठेंगे ना, जब तक एक भी दाग रहेगा तनिक भी दुर्गंध रहेगी तो मक्खी बैठेगी कि नहीं। अभी कोई आम या कटहल ले आओ और यहाँ पर रख दो फाड़ करके कुएं को अलग करके, तो क्या होगा, मच्छियों से एकदम चारों तरफ से फरे, ऐसी गंदगी रहेगी तो मक्खी आएगी, मक्खी माने अपराध अनर्थ से ये सब आएंगे। इसलिए सबको अच्छी तरह से धो धाकर पहले झाड़ू से निकाल करके बड़े बड़े को फेंकिए, इसके बाद में फिर धोइए, फिर साफ कीजिए, इसके बाद में दो तीन बार साफ हो जाने के बाद में पानी से दे करके छोटे छोटे को भी हटाइए, धूली इत्यादि सबको, और जब उससे भी कुछ रह गया तो कपड़े से माथ धो करके साफ करके दूसरे दिन कल हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को उसमें बैठा। किंतु एक बात है, एक जगह श्रीमद् भागवत में लिखा है कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो क्या श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की हरि कथाओं को यदि हम सुनेंगे ना, कैसे सुनेंगे, आंख बंद करके जैसे हम सो रहे हैं ऐसे नहीं, सोते हुए नहीं सुनना चाहिए, किस रूप में सुनना चाहिए, मानो अमृत जैसे पीते हैं, पीते हुए मैं इसको करूंगा जो सुन रहा हूं आज भी करूंगा, आज से सुना जो क्रोध नहीं करना है, अब आज से क्रोध नहीं, आज से किसी से हम शत्रुता नहीं रखेंगे तो आज से ही शत्रुता नहीं रखेंगे, आज से किसी के प्रति वही मनुष्य इत्यादि नहीं रखेंगे तो आज से आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, आज से अपना हृदय में छिपा करके कोई गंदी चीज नहीं, आज ही से करना है तो आज ही से करो, ऐसे श्रद्धा पूर्वक सुनने गए यदि कोई तो कृष्ण क्या करते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन है, सुनने वाले को हृदय को पवित्र बना देने वाले हृदय में प्रवेश कर जाएंगे कथा के माध्यम से और उसको अपने आप साफ करके अपने आप बैठे, ये पद्धति सबसे अच्छी है। झाड़ू से साफ करेंगे, मैं क्रोध नहीं करूंगा इसे नहीं होगा, क्या तात्पर्य इसका हुआ, अपने प्रयत्न से अपना हृदय साफ करने से नहीं होगा, इसका एक है उपाय क्या, यदि भगवान की कथाओं को बड़े प्रेम के साथ में इसको करने के लिए सुनेंगे सुसुसु होकर के, सुसु भी कृति भी
जत्न परायण
होकर के, मैं आज से क्रोध नहीं करना है, मुझे आज से सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, जो कुछ होता है हमारे पूर्व कर्मों के पाप के वजह से ये सब हो रहा है उसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है, दुर्धर्षि महाराज जी कह रहे हैं दुर्योधन का दोष नहीं है, इसका नाम क्या है सुयोधन, दुर्योधन नहीं, भीम कहते थे दुर्योधन और ये कहते थे सुयोधन, इसलिए उनको सुयोधन मैंने इसका दोष नहीं है, ये दोष हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का है कि ये सब चीजें उपस्थित हो रही, लड़ाई भी हमको नहीं करनी थी, ये तो कृष्ण का आदेश पालन कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो हम लड़ाई भी नहीं कर, इसलिए ऐसा सोच करके काम क्रोध लोभ मत्सर्य क्रोध इत्यादि अनर्थ अपराध सब दूर करके भगवान को बैठाएंगे तो भगवान, तो ये कथा के माध्यम से होगा, हरि कथा ही हमारा झाड़ू है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, गांव गांव में
नाम
पट्टा लगा, उसमें झाड़ूदार बने, माने क्या कीर्तन का पार्टी बनाया, कीर्तन सुनो, कीर्तन दो प्रकार का, एक भगवान की लीला कथाएं रूपी और एक मृदंग ताल सुर के साथ, साधारण लोग आदमी यदि सुर होगा और कीर्तन की ध्वनि उसमें रहेगी गला मधुर होगा तो सब जितने लोग हैं सब सुनेंगे, और मोटे स्वर से यदि हरि कथा आप कह रहे हैं कोई नहीं सुनेगा, तड़क भड़क चाहिए, कोई चीज अच्छी है, नीम की पत्ती ठीक है खाने के लिए, रोग दूर होगा, किंतु कोई खाएगा ऐसे नहीं खाएगा, उसमें थोड़ा सा घी में भून दो, नमक लगा दो थोड़ा, और चावल के साथ में उसको खाओ तो देखो रुचकर हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन को चटपटा कर करके गांव गांव में उन्होंने मंडल स्थापन किए और कीर्तन का प्रचार किया, और उसके माध्यम से हरि कथा भागवत लेकर के भागवत भवन उन्होंने बनाया जहां भी गए, और वहीं पर भागवत की कथा हुई। इस तरह से हृदय साफ हो गया। हम लोग भी यही करेंगे, बड़े प्रेम के साथ में हरि कथाओं का श्रवण के माध्यम से हृदय को पवित्र बनाने की चेष्टा करें, तब तो होगा, और नहीं तो जन्म भर भी जैसा अभी भजन कर रहे हैं, काम क्रोध अपराध को साथ में लेकर के भगवान का भजन नहीं, आंख से आंसू नहीं आए, हृदय द्रवित नहीं, इसलिए सब कपटता छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके एकांतिक रूप से गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवान के प्रति शरणागत होकर के ये करेंगे, तब तक ये मंदिर साफ। आज यही तक रहे, शाम को हम लोग इसके विषय में हम और कुछ बतलाएंगे, कल शाम को भी वहाँ पर होंगे, वो सब लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे कीर्तन के साथ में, और ये झाड़ू लगाने का कार्य करेंगे, ऊपर से झाड़ू लगाने का कार्य बहुत सीधा साधा है, कोई भी इसमें कठिनता नहीं है, झाड़ू उठाया झाड़ू दे दिया, मूर्ख आदमी भी ऐसा कर सकता है, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनियों के लिए भी, साधकों के लिए भी मंदिर में आता हृदय में झाड़ू लगाना जो चैतन्य महाप्रभु को अभीष्ट है वो करना बड़ा भारी कठिन है। वो तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे प्रभुपाद जैसे गुरु वर्ग जैसे लोगों के लिए ये संभव है। पहले यह काम चलता था नौकरों के द्वारा कराया जाता था, राजा नौकरों के द्वारा कराते, महाप्रभु जी ने कहा कि नौकरों से ये पूजा नहीं होती, घर साफ नहीं होता, इसलिए हम अपने भक्तों को ले चलेंगे और भक्तों के द्वारा जो काम कराएंगे और भक्तों को सिखलाएंगे कि कैसे अपना हृदय साफ किया जाए। मंदिर तो सब समय साफ है, उसको साफ नहीं करना है, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान, साफ करना है क्या, अपना हृदय साफ करना है। तो कैसे ये साफ होगा, आज सवेरे थोड़ा सा उस पर हमने दृष्टिपात किया, थोड़ा सा बतलाया अपने लिए भी दूसरों के लिए। तुम लोग कुछ कहोगे तो फिर हम कहें, नहीं तो दूसरे देखो तो काफी। प्रेमानंद जी थोड़ा सा बोलो, यदि कोई शुद्ध वैष्णव है वो कोई अपना इंद्रिय तर्पण नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर जो उपस्थित भक्त हैं वो अपना इंद्रिय तर्पण चाहे हिंदी में बोलो चाहे बंगला में, वो इंद्रिय तर्पण नहीं चाहते, बल्कि वो कृष्ण का इंद्रिय तर्पण क्या कैसे करेंगे, इसलिए हिंदी भाषा में या बंगला भाषा में या किसी भाषा में सुनना चाहते, इसलिए उनके ऊपर में ये प्रयोग देने का। आज आप लोगों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के पूर्व दिन अपने प्रिय पार्षदों को संग में लेकर और गुंडीचा मंदिर में जाकर के उसका मार्ग, और बाई चांस आज ही के दिन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो महाप्रभु के प्रिय परंपर हैं तिरोभाव और गदाधर पंडित जी का उनका भी तिरोभाव, उनका भी तिरोभाव। चैतन्य महाप्रभु देखो कितनी बड़ी बड़ी सहज कामों में ही
महाप्रभु जी के और उनके भक्तों की शिक्षाएं होती साधारण से साधारण। झाड़ू लगाना देखो जैसे कितना बड़ा एक मत का किन के लिए। कुछ दिन पहले ही चैतन्य महाप्रभु दक्षिण प्रदेश में गए, गोदावरी के तट पर रामानंद से भेंट हुई और उसने उन्होंने महारसराज रसराज महाभाव को प्रदर्शन जिसे रामानंद जैसे व्यक्ति भी उनके चरणों में लुट गए और दर्शन करके वो किताब छोड़ गए। और उन दोनों के संवाद में ऐसी कथा हुई जो विश्व के लिए नई चीज थी। वहीं से चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत के जीवों पर कृपा करना और रसास्वादन करना दोनों कोई अनर्पित चरण चिराग वाला आराधा भाव राधा या प्रणय महिमा इन दोनों को अर्थात तो राधा भाव का आस्वादन आरंभ किया और जगत में प्रेम दान था। कहां रस राज भाव महाभाव दिखलाया अंतिम सोपान उठाया कहां से
वर्णाश्रम धर्म
और लेकर के कहां चले गए शतांग प्रसंगम मूल्य संकित यही कर्म ज्ञान इत्यादि सबको छोड़कर के भगवान की कथाओं से ही आरंभ किया। तो महाप्रभु जी ने कहा
ज्ञाने प्रयास
उनके पास वहां लेकर के और वहां से शांत दास्य सख्य वात्सल्य और अंत में मधुर सभी महाप्रभु जी की तृप्ति नहीं हुई उससे ऊपर में बढ़ गए गोपी भाव गए। महाप्रभु जी तृप्त होकर के भी और भी उनको कृष्णा जगी और कहो राधा भाव ले गए अभी और कुछ बाकी है तो और कहो। तो उन्होंने यही रिमार्क किया इसके बाद में और कोई प्रश्न करना है इसके बाद में कुछ कहो विश्व में आज तक पैदा नहीं है ये तो आप ही है जो आप ऐसा हो। तब उन्होंने यही रस राजमा भाव को बताया और वहां से लौट करके जब पूरी आए तो ये रथ यात्रा का प्रसंग है और उसी समय में देखते थे झाड़ू लगा रहे झाड़ू ले लिया खड़ा ले लिया और अपने परिषदों को लेकर के कहां उत्तम भाव जो वेद शास्त्रों का निगूढ़ से निगूढ़ तत्व वेद शास्त्रों में भी इसका वर्णन नहीं किया गया और कहां श्रीमद् भागवत में भी इस चीज को वर्णन किया और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वही चैतन्य महाप्रभु अब आकर के पुरी में झाड़ू लेकर के चल रहे मंदिर धोना यथार्थ में उनका ये नहीं था अभिप्राय। उनका अभिप्राय क्या था लोग भक्त तो होते हैं कुछ भजन भी करते हैं नौकरों चाकरों को तो छोड़ दो उनसे भक्ति का कोई संबंध ही नहीं है वो लोग क्या मंदिर इत्यादि को जो धोते हैं जो सेवा करते हैं मंदिर में उनके अंदर भी कितनी तरह की आवर्जनाएं गंदगी है ये चीज उनको उनके द्वारा खुलवाना भक्तों को क्यों लगे और उनको कह रहे हैं जैसे देखो ऐसे झाड़ू कितना ये सुंदर झाड़ू दे रहा है मीठी फर्शना कर रहे हैं झाड़ू नहीं दे रहा है वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है और झाड़ू में तो उसको मीठी फर्श ना देखो तो कितना सुंदर ये कितना ये झाड़ू लिया कुछ भी नहीं झाड़ू वो लज्जित होकर के फिर अपने काम में तत्पर हो जाए और फिर जो करता है उसके लिए देखो ऐसा करना चाहिए सब इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं और दूसरों से भी कर रहे हैं मंदिर धोना मैंने अपना हृदय इसलिए केवल दीक्षा से बाहरी दीक्षा लेने से ही नहीं हो जाए तिलक माला इत्यादि धारण करने से भी नहीं होगा ये कैसे होगा यदि गुरु वैष्णव के आदर्शों को लेकर के हम अपने हृदय को शोधन करें परिमार्जित करें सबसे पहले वह अन्य अभिलाष को ज्ञान कर्म के प्रयास को और अनुकूल रूप में कृष्ण के समस्त प्रीति के लिए अपने सर्वस्व इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा तब तो वो इसलिए यही सब चीजें हमने सवेरे भी बतलाया था जो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि है, इसको हटाना है। हम झाड़ू दे सकते हैं घर में, किंतु हृदय से झाड़ू से कैसे इन भावों को दूर करेंगे, अपराध अनर्थ, ये जरा कठिन है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी को नाम भट्टका झाड़ूदार होता है। हम लोग के गुरु बाकी ये सब झाड़ूदार, झाड़ूदार होना बहुत नीचा काम नहीं है, मात्र उसी झाड़ू के द्वारा ही प्रताप रूप राजा पर प्रसन्न हो, इसलिए झाड़ू लेकर के वहां जाकर के दे रहे हैं। पहले झाड़ू दिया, झाड़ू ले रहे हैं, दे रहे हैं, खड़ा ले रहे हैं, खाली खड़ा लौटा रहे हैं, भरा हुआ खड़ा ले आ रहे हैं। संकेत किस चीज का है?
नाम
कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेने के समय कृष्ण, देने के समय में कृष्ण, झाड़ू देने के समय भी कृष्ण, सब समय कृष्ण ही कृष्ण है। ये झाड़ू देने का तरीका है। ऐसे करने से ही हृदय की ये बिल्कुल भी वासनाएं और सब चीजें अनर्थ है, उसमें प्रवेश करने को उसको समय नहीं। इसलिए सब कामों में सब समय अपने घर में भी ऐसा ही करना, उसका अवकाश नहीं है क्रोध होने का, उसका अवकाश नहीं है कुछ कामना वासना करने का, वैष्णव से की निंदा करने का, गुरु की अवज्ञा करने का, परिणाम में अर्थवाद की कल्पना की और देह में आत्मविमान की कोई भी उसको अवकाश नहीं, जिन्हें निरंतर सब समय कृष्ण कृष्ण। इसलिए महाप्रभु जी पहले यही शिक्षा है, झाड़ू दो अनर्थ को दूर करने के लिए और कुछ प्रयास नहीं, हरि कथा श्रवण और ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही ये सब प्रदेश। इसलिए बतलाया शिक्षा स्तर में महाप्रभु जी ने कृष्ण नाम परम विजयते श्री कृष्ण स्वामी कृष्ण, परम विजयते यही श्री कृष्ण नाम, इसी के द्वारा सब होगा। इसलिए कृष्ण कृष्ण कहना और वैष्णव की मुख से भगवान की कथाओं को सुनने से हमारी ये सब, किंतु हाँ ये सुनने से नहीं होगा, उसके साथ में प्रयास करना होगा। चैतन्य महाप्रभु जी झाड़ू लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, ये प्रयास है, किंतु साथ साथ में कृष्ण नाम कीर्तन इत्यादि भी उसके साथ में लगा हुआ है, इसलिए दोनों काम एक साथ में चलना चाहिए। ये सब झाड़ू देने का तरीका है। संसार में भी रहिए, घर में रहें या बाहर में रहिए, मंदिर में रहिए, किंतु इसी प्रकार से अपना आचरण करना हो। कभी झाड़ू बनाया हुआ है, हमारे गुरु वर्गों ने बनाया, महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को आदेश दिए झाड़ू बनाओ और झाड़ू बना करके भक्तों को दिए, तो उन्होंने एक झाड़ू बनाया। वो झाड़ू क्या है?
मानस इच्छा
का है उपदेश, वही झाड़ू, उसमें दो चार और सीखे जोड़ दी, देखा जो पतला हो गया है तो उसको और जोड़ दिया। किसने? दास गोस्वामी ने मनः शिक्षा के द्वारा। यदि हृदय को निर्मल करना है तो इन दोनों ग्रंथों को जो प्रारंभ में पढ़ करके वैसा बनाओ, और यदि नहीं बना सकेगा वो झाड़ू का व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इन दोनों झाड़ियों को एकत्र करके और जगत के हृदय में, इधर चैतन्य महाप्रभु मंदिर साफ करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय मंदिर साफ, भक्तों का मंदिर हृदय मंदिर साफ कराने के लिए, उसमें एक घटना घटी। घटना घटी, एक कोई कुड़िया भक्त आया और वो घड़े में पानी ला रहा है, देखा जी बड़ा सुंदर मौका है, महाप्रभु कभी मिलते ही नहीं थे और उनका चरण तो कभी मिलता नहीं, और ये अपने को छिपा करके रखते हैं। स्वयं भगवान कृष्णचंद्र है, सुन रखा था स्वरूप दामोदर रामानंद इत्यादि से, इसलिए सोचा जी कभी मौका नहीं मिलता है, आज अच्छा मौका मिला है। बस सबके सामने मंदिर में ही खड़े हुए महाप्रभु जी हो रहे हैं और उनके चरणों में उसने तो दे दिया, किंतु महाप्रभु जी से रख गए, बड़े क्रोधित हुए और जाकर के राय उनसे स्वरूप दामोदर जी से, तुम्हारा गुड़िया भक्त
हमारे
गौड़िया, आज देखो तो इसका व्यवहार आज हमारा इतना अपमान किया और हमारी दुर्गति की, दुर्गति क्या, हम इस दुर्गति को नहीं समझते हैं। ये समझना ही वैष्णवता है, महाप्रभु जी की कृपा है। दुर्गति क्या है, हम थोड़ा सा भजन कर लें। और यदि ठाकुर जी के सामने में, अपने गुरु वर्गों के सामने में भी यदि हम अपनी प्रतिष्ठा लेते हैं तो ये सबसे बड़ी दुर्गति। ये क्या हुआ, वैष्णव अपराध हो जाएगा, भगवत अपराध हो जाएगा। उसने तो वो विचार नहीं किया, ये जगत को शिक्षा देने के लिए जगत गुरु के रूप में आए, इसलिए इन्होंने एक छोटी सी बात में ही उसको विचार करके देखा। हमारे बाद में आने वाली पीढ़ियों में यह भयंकर रूप से बढ़ जाएगा और सब लोग अपने भ्रष्ट, अपने विचारों से भ्रष्ट होकर के चले जाएंगे, भक्ति जहन्नम में उनकी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने देखा कि अभी रोक देना चाहिए, इसलिए स्वरूप दामोदर से कहा। स्वरूप दामोदर जी इस चीज को समझे, उन्होंने देखा जैसे इसने किया तो है, बात तो कहना थी, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, किंतु साधारण रूप में, सामाजिक रूप में ये बात ठीक नहीं। महाप्रभु जी के लिए इतना तो ठीक है, किंतु साधारण लोगों के लिए ठीक नहीं है। यहां तक कि साधारण रूप में हम लोग जो गुरु बनने वाले हैं, साधारण अधिकारी, और अपने को गुरु मान करके ऐसा यदि कराए, उनका भी सर्वनाश होना हो सकता। इसे ठाकुर जी के मंदिर में उन्नत वैष्णव के सामने में कोई भी प्रतिष्ठा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि निम्न अधिकारी नहीं जानता है, वो तो करेगा, देखेगा जवाब बड़ा अच्छा है, करने लग जाएंगे। वो अच्छे अच्छे विषयों में भी जहां पर गंभीर होना चाहिए, गंभीर न होकर के क्या करेंगे, यही मनोविरोध करते। गुंडीचा मंदिर एक बहुत गंभीर विषय है और उसमें सभी लोग आए और जिसको अपना पूज्य समझते हैं उनके चरणों में पानी देने लगे और वो हल्ला कर रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं, वाह वाह वाह। तो ये मनोविनोद एक रिक्रिएशन हो जाए, इसलिए इसको साधारण मनोविनोद के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है, इसलिए भक्ति धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि हमारी दुर्गति इसने की। कैसे दुर्गति, हमारा लोक परलोक सब कुछ बिगाड़ दिया, ठाकुर जी के मंदिर के सामने में मैं उसकी प्रतिष्ठा को ले रहा हूँ, चरण धुलवा रहा हूँ और सभी लोग पानी लेकर के गुरु से पी रहे हैं, ये मेरा सर्वनाश। उसका तो जो कुछ हुआ वो नहीं हुआ, किंतु हमारी दुर्गति है। इसलिए महाप्रभु जी पहले तो मना किया, तभी नहीं माना तभी दे दिया। महाप्रभु जी ने गंभीर रूप में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भविष्य के लिए पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, नहीं समझेंगी। इसलिए एक छोटे से एक अपराध और था, छोटा हरिदास ठाकुर, हरिदास कोई इसने दोष नहीं किया, उसका कोई भी दोष नहीं था, किंतु अपने परिकरों के द्वारा ही दूसरों को शिक्षा देते हैं। वो एक बूढ़ी औरत से महाप्रभु जी की सेवा के लिए कुछ चावल मांगने के लिए लाया। महाप्रभु जी का जाए कौन मांग करके लाया, छोटा हरिदास मांग करके बोला, अच्छा क्यों गया, औरतों से बातचीत करने के लिए, जाओ आज से जीवन में कभी भी तुम हमारे पास में नहीं आना, मना कर दिया। गोविंद कुमार मत कभी ना तान कर, मैं इसका मुख दर्शन नहीं करना, यह बैरागी हो गया कर विषय भाषण। यदि महाप्रभु ने ऐसा किया, यह बात ठीक है, ऐसा करना उनका उचित हुआ, हम लोग शिक्षा दिया। किंतु हम लोग के प्रभुपाद थे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, बड़े बड़े आदमी, उनके समय में एक ऐसा ही उनका सेवक था, वो कुछ गड़बड़ काम किया, इसलिए संभाषण इत्यादि जैसा उसको भगवान से निकाला नहीं, बल्कि वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति था, हमने उसको उनको देखा है, बड़े नामी यशस्वी, किंतु इस विषय में उसकी कुछ कमजोरी दुर्बलता। तो प्रभुपाद जी को वो सोने के ग्लास में किसी ने दे दिया कोई शरबत, तो उन्होंने थोड़ा सा लगा करके उसी व्यक्ति को दिया, किंतु ये नहीं कहा जैसे तुम यहां से निकल जाओ। क्यों नहीं कहा? महाप्रभु जी ने तो शिक्षा के लिए किया, किंतु ये लोग नहीं बना रहे, ये लोग उनको रक्षा करते हैं। देखा जैसे ये भगवान का विरोधी नहीं है, भले ही कुछ आ गई है अन्य अभिलाषिका, इसलिए उसको क्षमा कर देना, ये महापाप बदल जाता है। प्रभुपाद के गुरु की ऐसी की बात, इसलिए ये लोग भजन करके उसको सुधार सकते हैं, किंतु महाप्रभु अपने स्थान पर ठीक है, ये अपने स्थान पर। इसलिए हम लोगों को आज के दिन में सुंदर रूप से झाड़ू देकर के अपने इन सब दुर्गुणों को निकालना चाहिए, भगवान के भक्ति के लिए, भगवान को हृदय में लाने के लिए इसके लिए यथेष्ट चेष्टा करनी पड़ेगी। इधर में झाड़ू भी देंगे और कृष्ण नाम भी करेंगे, साथ साथ में पानी से धोएंगे भी, हरि कथा श्रवण करेंगे। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा उपायों के द्वारा हम लोग मंदिर मान जाएंगे, तभी फिर ये शुद्ध रूप से हम भगवान की सेवा में अधिकार पाएंगे। इसलिए इस गुंडीचा मंदिर मंदिर का ये एक उद्देश्य है। दूसरी बात, वहां पर मंदिर भाजन के बाद में भक्त लोग सब प्रसाद पाए, महाप्रभु जी ने अपने हाथ से प्रवेशन करना आरंभ किया, किंतु उन लोगों ने सबको प्रवेशन कर दिया, बैठा तो दिया किंतु किसी ने हाथ नहीं उठाया, खाया नहीं। सर्वदामोदर जी ने कहा जैसे ये कोई भी नहीं पाए, इसलिए आप कृपा करके बैठ जाइए, बैठने के बाद में हम लोग प्रवेशन करेंगे और जब आप पाने लगेंगे तभी पाएंगे। तब फिर उन लोगों ने चार पांच आदमी लोग पानीनाथ और कौन कौन ये सब प्रवेशन करने लगे और महाप्रभु बैठे। थोड़ी देर के बाद में नित्यानंद प्रभु जी से और अद्वैताचार्य में विवाद लगे, विशेष करके जब वहां पर जल में स्नान करने गए
नरेंद्र सरोवर
में, वहां भक्तों की यह प्रेम का विनोद भी इसमें बहुत बड़ी सब शिक्षाएं होती हैं। साधारण आदमी इन चीजों को नहीं समझ सकता, परस्पर विनोद के द्वारा कुछ इधर उधर कर रहे हैं, लड़ाई जैसा झगड़ा जैसा बात ही बात जैसा, और उसमें बड़े बड़े सिद्धांत दिखला रहे हैं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी ने अपना जूठा फेंक दिया, चारों तरफ में छीट दिया, वो उसका एक कण आ गया द्वैताचार्य के पत्ते में। मैंने कहां से ये भ्रष्ट आ गया सन्यासी अवधूत, और एक जूठा फेंक दिया, हमारा सब अपवित्र हो। अब नित्यानंद प्रभु, अरे इतना विद्वान हो करके इतना जानने समय हम लोग देहात्म बुद्धि तुम्हारी बनी रही, तुम नहीं जानता कि महाप्रसाद बड़ा पवित्र है, कभी अपवित्र ही नहीं होता, और इसी से तुम अपवित्र हो गया और तुम्हारा भोजन अपवित्र हो गया। कैसे ऐसे सब, इसी तरह से उनका परस्पर झगड़ा करना विवाद भी वैष्णव की शिक्षा का विषय होता है। झगड़ा ऊपर से देख रहे हैं ये नहीं, भीतर से देखो इस सिद्धांत के लिए ये सब परस्पर वार्तालाप या ये झगड़ा कर रहे हैं। इसी तरह से उनका सब चरित्र है, इसका विस्तार रूप में वर्णन किया गया है। आज रात अधिक हो गई, इसलिए यही संक्षेप में हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग 5:30 बजे आप सभी लोग आ जाएंगे, यात्रा के बाद में पंद्रह अवसर
काल,
उसको अन अवसर काल का न अवसर काल, दर्शन करने का अवसर न होने से अन अवसर वो क्यों, परमार्थिक भावना रखते हुए भी ठाकुर जी का प्रतिदिन प्रति वस्त्र एक नया नया रंग होना चाहिए, उसको कहते हैं तो क्या कहते हैं, नमक कर लेगा नहीं होता, 12 वर्ष के बाद में होता है, उसको होते हैं अंगरा। ठाकुर जी का प्रति वर्ष अंगराग होना चाहिए, जैसे आदमी स्नान करता है, केशों को सवार लेता है और अंगों को सब शिक्षा कर लेता है, अच्छे भूषण कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह से ठाकुर जी को प्रति वर्ष अंगराग देता है। तो उसके लिए अनवसर काल किया गया है। उसमें हम भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं, उनका ये 11 12 दिन 15 दिन तक उनका अंगों का श्रृंगार किया जाता है। स्नान करने के बाद में वो कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसी को धार्मिक भावना देकर के उसको अनवसर। ठाकुर जी बीमार हो गए हैं, उनको पदभजन हो गई है, उसमें दर्शन नहीं दे सकते, उनको चूर्ण और क्या वो पाचन हजमी पानी जीरा जल जल जीरा उनको खिलाया जाए। इसके बाद वो कहते हैं जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई, अब घर में मेरा मन नहीं लगता है, मैं बगीचे में टहल नहीं जाऊँ। लक्ष्मी देखते हैं जैसे इसका मन तो खराब हो गया है, अभी मन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी चलूँ, उन्होंने कहा कि नहीं तुम मत जाओ, मैं अकेले जाऊँ। उनको सब हुआ ये कहीं ये वृंदावन में चला गया, इसलिए कहा जैसे सब अकेले कैसे जाएंगे, तो अपनी बहन को और अपने बड़े भैया को साथ ले जाएंगे। कहीं हाँ जी मंदिर बस बड़े भाई बलदेव जी को और छोटी बहन सुभद्रा जी को साथ लेकर के अपने बगीचे में टहलने के बहाने में चलते 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 वो वृंदावन में पहुंच गए। मैया के पास में बलदेव और सुभद्रा जी को बातचीत करने के लिए बैठा करके और बहाना बना करके चले गए गोपियों से मिले। अब वो 4-5 दिन हो गए नहीं लौटे। अब वो खूब विचार करके देखने लगी कि कहाँ है, कहाँ गए, लौटा क्यों, कहीं मन लगा लिया हो। मन लगाने में तेज है, इसलिए उसको खोजने के लिए इसको कहते हैं घेरा पंचमी, घेरना में देखने के लिए कहाँ गया था। समझ गई वो ठिकाना ठीक जानती थी कि यही पर हो, इसलिए संदेह के वजह से वहीं पर गई जहां पर भी और रह सकते हैं। ठीक है एकदम ब्रज में पहुंच गई और वहां पहुंच करके उनको देखा नहीं। सबसे पहले क्रोधित होकर के रथ को तोड़ा और रथ को तोड़ने के बाद में फिर खोजने लगी, उनके दरवाजे तोड़ने लगे। इसके बाद में गोपियों को पकड़ करके उनको मारा पीटा और उनको कहा जल्दी से ला दो। उन्होंने कहा जट से हम लोग 2-4 दिन में उनको आज भी हम लोग भेज। इसके बाद में फिर 9 दिन के बाद में वहां से लौट श्रद्धालु में पहले ये भी भावना नहीं कर गया तो ठाकुर जी का मंदिर उसी दिन प्रतिष्ठा हुई, इसलिए वहां से गुंडी का मंदिर जाएंगे वहां से लौट करते हैं। किंतु इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु जी की ये भावना तब से काम कर, भावना क्या, कृष्ण चले गए हैं वृंदावन से मथुरा कंस को मारने के और वहां से कंस को मारने के बाद में उनके पिताजी ने चला थी चतुराई से उनमें संस्कार जगाना चाहा मथुरा। मथुरा संस्कार कैसे जगेगा जो बचपन से लेकर के 10 वर्ष तक नंद मेरे पिताजी हैं, यशोदा मेरी मैया है, मैं गोप हूं, ये जो उनकी भावना बनी है इसको वसुदेव जी हटाना चाहते इस संस्कार और उसके बदले में क्षत्रिय अभिमान क्षत्रिय वेश क्षत्रिय स्वभाव ये जगना चाहते हैं। इसलिए उसको कृष्ण बलदेव जी को कंस के मारने के कुछ दिन बाद ही में भेज दिया बहुत दूर, जब वृंदावन न जा सके वृंदावन के किसी लोग से भेजना संस्कार को उधर का संस्कार मिटाकर और इधर का संस्कार पैदा करने के लिए। इसके बाद में कृष्ण वहां से आए गुरुकुल से आए, तब तक उसका आक्रमण हो चुका था, प्रतिवर्ष आक्रमण हो रहे हैं 18 वर्ष तक आक्रमण। इसके बाद में कृष्ण चले गए, परिस्थिति ऐसी दिखाई अब कोई उपाय नहीं, चले गए वहां। वहां जाने के बाद में रम गए, क्रमश उनकी शादियां हुई, जाम्बावती जी से शादी हुई, इसके बाद में धीरे 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 आठ महिषियों के साथ में शादी हुई, इसके बाद एक ही साथ में 16,100 महिषियों के साथ में शादी हुई, इसके बाद में बच्चे हुए, एक एक कुल 10-10 बच्चे हुए, एक एक बच्चे हुए एक एक वर्ष में, तो ये 10 वर्ष ऐसे निकल गए, इधर का निकल गया। फोटो के कृष्ण जब 70-75 वर्ष के लिए हुए तो सूर्य ग्रहण में सोच रहे हैं कि कैसे गोपियों से उनको सुजोग देना चाहिए, इसलिए कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए, उसमें पूर्ण ग्रास सूर्य ग्रहण कर रहा है। ये जो वहां पर गए कहां, तटस्थ भूमि, तटस्थ माने क्या, बीच का, जैसे हम उपमा देते हैं, जैसे किसी को लड़की दिखानी है विवाह के लिए, तो हम कहेंगे जिसे लड़की को मेरे घर में ले आओ, यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे घर वाले देखेंगे और तब विवाह ठीक करेंगे, तो पसंद आ जाएगा, तो कहेंगे तो लड़की वाला राजी होगा कि नहीं, अरे यहाँ नहीं, जन्मभूमि में कृष्ण का जो मंदिर है ना वहां पर ले आना, गौड़ीय मठ में ले आना, वहां अग्रवाल धर्मशाला है, वहां तुम्हारे घर में भी नहीं और हमारे घर में भी, बीच वाले जगह वहां लज्जा की कोई बात नहीं रहेगी, वहां पर आ जाए। तो ये कुरुक्षेत्र न तो ऐश्वर्य भूमि है न माधुर्य भूमि है, कुछ भी नहीं, साधारण सा भूमि है, इसलिए गोपियां यहां से गंगुल की दूरी स्थित मथुरा में नहीं आई, वहां पर जा रही है, वहां से दूर है कुरुक्षेत्र, वहां चली गई, किंतु यहां नहीं आई, और कुरुक्षेत्र जितना दूर है उसे थोड़ी दूर हो सकता है कि दूर द्वारका हो, और द्वारका भी नहीं गई, किंतु कुरुक्षेत्र में गई सभी नंद बाबा सब, क्यों, इसलिए कि तपस्या कृष्ण वहां पर आ सकते हैं, ये भी ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों वहां पर मिल सकता है, इसलिए वहां पर दोनों का मिलन था, गोपियां भी नाश से गई हैं, कृष्ण से वहां पर मिलन हुआ, कृष्ण ने इनको समझाया ज्ञान की बातें जो कि उद्धव के द्वारा या बलदेव के द्वारा जो समझाया, और जब ज्ञान की बातें कहें तब कृष्ण ये गोपियां कुछ रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर के उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, आहुष्यते नन्द नाम पदारण योगेश्वरे विचिंतम अबाध बोधई संसार कुपतितो तरणावलंबम देहम दुषान मनस्सूर्या। गोपियों ने कुछ ऐसे भावभंगी से कहा कि कृष्ण ही समझे और कोई न समझे, आहुष्य माने क्या, कुछ रुष्ट होकर, कुछ मान भरे होकर, कुछ दो भाषा में, दो भाषा होती है, ऐसा भी अर्थ लगे वैसा, जैसे कि कोई हमसे, कोई व्यक्ति यहां से चला है, कुछ बात हो गई, विवाद विवाद हो गया, वो चला गया, फिर थोड़े दिनों के बाद में आया, हमने कहा कि आप क्यों आए, आपने आने का कष्ट क्यों किया, मतलब क्या, कोई प्रिय व्यक्ति हमारा है, हम चाहते थे, हम रोज में सोता था जो उसको बुला लाऊं या मैं जाऊं उसे देख कर, मैं खुद उससे मिलने के लिए उत्सुक, किंतु मैं नहीं गया किसी काम से, वो व्यक्ति खुद ही आ गया, मैं उसे मिलना चाहता था, किंतु जब वो आया तो हम कहते हैं जैसे आपने क्यों तस्करी फरमाया, आप क्यों यहां पर है, इसका मतलब क्या है,
और
जुम
जाना चाहिए
ऊपर से लोग समझे ये तुम बताना, किंतु भीतर से स्टार्ट करिए, इसलिए गोपियां कह रही हैं आहुष्च, आहुष्च में जरा थोड़ा सा पीछे नैनों से कृष्ण की तरफ में बंकिम नैनों से देख करके, बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया, हम आपकी जन्म जन्मांतरों की ऋणी हैं। भला ऐसा ज्ञान का उपदेश देने वाला सूर्य के समान, भास्कर के समान, जिनके उपदेश की प्रखर किरणें हैं, ऐसा संसार में मिलना, गुरु मिलना प्रखर उपदेश वाले गुरु, गुरु महाराज आपको कोटि कोटि बार नमस्कार है। और ऐसे ज्ञान से हम आप कृतार्थ हो गए, हमको ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु। मैंने ये थोड़ी से भावने करे कर रुष्ट होकर के ये कर, जैसे अर्जुन गीता का सब उपदेश सुनने के बाद में कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्यमान एकम शरणम ब्रज अहम सर्व पाप भो मोक्षयिष्यामि। कृष्ण ने कहा देखो मैं तुमको एक लाइन में सारे गीता का और समस्त शास्त्रों का उपदेश सुना रहा हूं। वेद वेदांत उपनिषद जितने भी हैं, पुराण महाभारत इत्यादि सबका सार है गीता है। कि मन्य शास्त्र और शास्त्रों के विस्तार से क्या हुआ, इसमें समस्त शास्त्रों का सार गीता है। ये गाय के समान है और दोहन करने वाले कौन है, गोपाल नंदन दुग्ध भोक्ता और सुधीर भोक्ता। बछड़े को दिखला करके दूध किसके लिए, साधारण लोगों के। तब अन्य किन शास्त्र विस्तार है और शास्त्रों के विस्तार से लाभ किया, कोई जरूरत नहीं है, बस गीता से सुनने से हो जाए। और ऐसे गीता का शास्त्र कृष्ण कहते हैं मैं तुमको बता रहा हूं दो शब्दों में, क्या सब धर्मानुपर्त सब धर्मों को वर्णाश्रम धर्म इत्यादि को छोड़ करके बस हमारी शरण ले लो बस, और मैं तुम्हें इससे यदि कोई कुछ पाप हुआ सब धर्मों को छोड़ने से तो मैं तुमको इससे छुटकारा दूं। अर्जुन ने कहा वाह वाह सखा ऐसा उपदेश तुमने सुनाया जो आज तक कभी किसी को मालूम ही नहीं था। मतलब क्या थर्ड क्लास का उपदेश सिखलाया, एमए पीएचडी डिलीट पास कर लिया, उसको कहा जैसे कौन लिखो ऐसे कौ, उसको कब की शिक्षा दे जो सबसे पहले कभी जन्म जन्मांतरों में पहले ये सब शिक्षा पा लिया सब धर्मों को छोड़कर। मैं तुम्हारा आज तक शरणागत नहीं हूं, इसका मतलब ये हुआ अब सब धर्मों को छोड़ करके अब पहली बार तुम हमारे शरणागत। मैं शरणागत हूं, शरणागत कौन है, शरणागत किसको कहते हैं। इस जगत में सबसे पहले जिनको एबीसीडी का परमार्थ का ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं जानते हैं कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, ऐसा व्यक्ति गुरु के यहां जब जाएगा अपने ज्ञान को सबको अलग अलग करके गुरु जी के चरणों में शरणागत होगा। मैं आपके शरण में, शरण में हूं का अर्थ क्या होता है, पहला अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल हम ग्रहण करेंगे प्रतिकूल नहीं छुएंगे, उसको दूर रखें। और एकमात्र आप ही हमारे बालक है और रक्षक, मैं आप ही को अपना शरण्य मानता हूं और तन मन वचन से उनके शरणागत होकर के उनके भावों को ग्रहण करके उनका भजन करना ही ये शरणागति है। अनुकूल्य से संकल्प प्रातिपुर से विवर्जनम रक्षस शरीर दिशा, कृष्ण ही हमारे एकमात्र।